समाचार सेवा प्रभाग से प्रस्तुत है हमारा साप्ताहिक कार्यक्रम पब्लिक स्पीक।
नमस्कार, पब्लिक स्पीक में मैं हूं आपके साथ फरहत नाज। और कार्यक्रम में आज का हमारा विषय है विश्व पृथ्वी दिवस, सतत भविष्य के लिए सौर ऊर्जा। हम सब 22 अप्रैल यानी दो दिन बाद विश्व पृथ्वी दिवस मनाएंगे, इसीलिए हमने आज का ये विषय चुना। और आज इस विषय पर बात करने के लिए हमने आमंत्रित किया है हमारे स्टूडियो में राष्ट्रीय सौर ऊर्जा संस्थान के महानिदेशक डॉक्टर मोहम्मद रिहान को। नमस्कार मोहम्मद रिहान जी।
थैंक यू, नमस्कार।
कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन। और श्रोताओं, हमारी फोन लाइन्स खुल चुकी हैं, आपको हमें आप फोन कर सकते हैं। नंबर है 0112331 0481, 0112371717, 0112371716 और 0112331444। इसके अलावा आप व्हाट्सएप नंबर 9289094044 पर भी सवाल पूछ सकते हैं। आप हैशटैग #AIR के साथ एक्स पर भी सवाल पोस्ट कर सकते हैं। तो हमें है आपके कॉल का इंतजार। तो सबसे पहले हम आइए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। रेहान जी, इससे पहले भी हमने आपके साथ सौर ऊर्जा पर चर्चा प्रसारित की थी और उस समय हमने सोलर पैनल पर बात की थी, घरों में किस तरीके से सोलर पैनल काम करते हैं, इससे बिजली की कितनी बचत होती है, और इस पर हमने श्रोताओं के प्रश्न लिए थे। तो आज भी हम फोकस करेंगे कि किस तरीके से सौर ऊर्जा से पर्यावरण को शुद्ध रखा जा सकता है, खेती के लिए कैसे उपयोगी है, और सोलर पैनल किस तरीके से लगवाया जाए या फिर बिजली में बचत जो है सोलर पैनल लगवाने से कैसे हो सकती है। तो श्रोताओं की डिमांड पर हमने दोबारा से ये टॉपिक चुना और विश्व पृथ्वी दिवस भी हम लोग दो दिन बाद मनाएंगे, तो ये बहुत जरूरी था कि सौर ऊर्जा को समझना। तो सबसे पहले हम आपसे ही पूछना चाहेंगे कि सौर ऊर्जा अब दुनिया में बिजली का सबसे सस्ता स्रोत बन गई है, तो इसको किस तरीके से और कैसी उपलब्धि इसमें हासिल की जा सकती है।
जी देखिए, आपने क्योंकि ये हमारा आज की बात जो है वो अर्थ डे से जुड़ी है,
जी,
तो मैं आप ये बात हाईलाइट करना चाहूंगा कि जो इस वक्त एक बड़ा चैलेंज है, यानी हमारे प्लैनेट अर्थ और पूरी ह्यूमैनिटी या पूरी लाइफ साइकिल जो है अर्थ के ऊपर, वो है ग्लोबल वार्मिंग, क्लाइमेट चेंज और ग्लोबल वार्मिंग, जो कि हम जिसके असर हम अपने आसपास भी देख रहे हैं। अब आप देखिए कि मौसम किस तरह से बदल गए हैं और गर्मी की जो इंटेंसिटी है, शिद्दत है, वो बढ़ती जा रही है।
जी बिल्कुल।
और जो मानसून के रुझान है, या आप देखिए बारिश इंटेंस होगी, गर्मी होगी तो इंटेंस होगी, और जो समुद्री इलाके हैं उनके क्योंकि सीज का जो लेवल है, समुद्र का लेवल, वो बढ़ रहा है, ग्लेशियर पिघल रहे हैं, फॉरेस्ट फायर्स है, तो इस सब के पीछे जो इस सब को एक जो नाम दिया गया है वो ग्लोबल वार्मिंग है। और उसका जो सबसे बड़ा कॉज है वो कार्बन डाइऑक्साइड एमिशन है। तो जो हम एनर्जी यूज करते हैं, ऊर्जा इस्तेमाल करते हैं अलग अलग फॉर्म में, चाहे वो गाड़ी चलाने के हो या हमारे घर में बिजली का इस्तेमाल करें, उसमें उसके बनाने में जो बनाने के जो परंपरागत तरीके हैं उसमें कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है। अगर आप कोयला जलाएंगे बिजली बनाने के लिए, तो एक यूनिट बिजली बनाने के लिए कोयले से करीब करीब 850-900 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है।
जी,
तो जो बिजली मैं अपने घर में यूज कर रहा हूं, जो बिजली अपने खेत में यूज कर रहा हूं, अपने ऑफिस में, अगर वो कोयले से बनी है तो उसका कार्बन डाइऑक्साइड कंट्रीब्यूशन है। उसको कम करने, उसे रोकने के लिए जो आज तरीके हैं उसमें सौर ऊर्जा एक बेहतर तरीके के तौर पे उभरा है, और इसीलिए पूरी दुनिया में उसको सबसे इम्पॉर्टेंट सोर्स माना जा रहा है अर्थ को बचाने का, क्लाइमेट चेंज को रोकने के लिए।
जी बिल्कुल। और हम हमारे श्रोता हमसे जुड़ गए हैं नई दिल्ली से, धर्मवीर जी। जी धर्मवीर जी,
नमस्कार जी।
नमस्कार।
नमस्कार।
मैं धर्मवीर गांधीनगर दिल्ली से बोल रहा हूँ। हमारे एक्सपर्ट, हमारे मेहमानों को बहुत बहुत धन्यवाद, आपने इस ज्वलनशील मुद्दे पर आज बात की है, क्योंकि आज के समय पे जो हमारे को देखा जा रहा है, गैस की दिक्कत है, खाना नहीं बना पा रहे हमारे काफी स्टूडेंट या मजदूर भाई, अगर हमारे पैनल लगे हों तो हम उस पैनल से अपनी एनर्जी बनाएं और अपने घर में ही बिजली से ही खाना बनाना शुरू कर दें।
जी
तो मेरा सवाल यह है कि जो हमारा पैनल जो हमारी बिजली बनाएगा, क्या उस पे धूप सुबह पूरब से दक्षिण तक और दक्षिण से पश्चिम तक आए तब पूरी पूरी ये एनर्जी हमारे को मिलेगी बनाने के लिए, बिजली मिलेगी? और एक यूनिट, एक किलोवाट कितने यूनिट बिजली बनाता है? सर्दियों में सुना है कि 6 या 7 बना देता है, और गर्मी में 6 से 7 और सर्दियों में 5 यूनिट, इसके बारे में बताएं। और ये सब्सिडी जो मिलती है 3 किलो तक का मिलती है, हम लगवाना चाहें 5 किलो तक, जिससे एक्स्ट्रा बने बिजली और बेफिक्र होके हम अपना इस चीज के लिए अपना, जैसे अभी प्रधानमंत्री जी ने भी अपनी बात करी थी, कल हमने कार्यक्रम सुना, तो उसमें हम अपने को कंजूसी नहीं करेंगे पंखे चलाने में, एसी चलाने में, तो पूरी तरह से हम अपना इसको यूज कर सकते हैं।
जी, तो आपका जो सवाल है, पहला तो कि एक किलोवाट से देखिए 4 से 5 यूनिट एक खुले दिन में, जो कि जिस दिन धूप है, खुला दिन है, 4 से 5 यूनिट आम तौर पे बन सकती है। कुछ दिनों में उससे ऊपर भी जा सकती है, कुछ दिनों में 3.5 हो जाए, 4 हो जाए, कभी 6 भी जा सकती है, 7 तक भी जा सकती है। ये जनरली हमारे देश के ज्यादातर हिस्सों में इतना जनरेशन आपको 1 किलोवाट से मिल जाएगा। जो इनका दूसरा सवाल था, यहाँ ये हमारी
सब्सिडी
पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना बड़ी इम्पॉर्टेंट योजना है, जिसमें 3 किलोवाट तक सब्सिडी है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप उससे ऊपर नहीं लगा सकते हो। सब्सिडी 3 तक है, लेकिन आप उससे बड़ा सिस्टम भी लगा सकते हैं, 5 भी लगाइए या उससे ऊपर भी लगाइए, तो वो लगा सकते हैं। और आपने उसको बहुत अच्छा कनेक्ट किया कि अगर आपके पास सौर ऊर्जा सिस्टम लगा हुआ है, आप जो बिजली बन रही है इस खासतौर से दिन में, आप उसका खाना बनाने में भी आराम से इस्तेमाल कर सकते हैं।
और अब हरिद्वार से रवि जवालिया जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। जी रवि जी।
हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम मैम जी।
वालेकुम अस्सलाम।
हाँ, और सभी महानुभाव को नमस्कार जी, और आप सभी का अर्थ दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं, जो पृथ्वी दिवस आने वाला है परसों। मैं ये जानना चाहता हूँ मैम, सोलर पैनल जो स्कीम योजना है सरकार की तरफ से, वो उसकी सब्सिडी का लाभ लेने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, क्योंकि मैं निम्न मध्यम वर्ग से आता हूँ। और मैम एक और सवाल है मेरा कि जो पृथ्वी पर पर्यावरण बचाने का कोई तरीका और हो सकता है जो मैं अपनी तरफ से कर सकता हूँ?
बहुत अच्छा सवाल है, मैं पहले आपके दूसरे पार्ट का जवाब दूंगा। देखिए, मेरा ये कहना है कि बिजली हमें बनानी होती है, क्योंकि इस्तेमाल करनी है, इसलिए हम बिजली बना रहे हैं। तो अगर सबसे पहला हम ये तय कर लें कि बिना जरूरत हम बिजली का इस्तेमाल नहीं करें, तो ये हमारा एक और कंट्रीब्यूशन हो सकता है। हम कभी जहां लाइट की जरूरत नहीं है इस्तेमाल ना करें, पंखे की जरूरत नहीं है, एसी की जरूरत नहीं है। एक तो ये आप हर आदमी कर सकता है और एक दूसरे को बता भी सकता है। दूसरा आपका सवाल, पहला पार्ट क्या था आपका?
हेलो, लाइन कट हो गई है इनकी। सब्सिडी को लेकर ही था इनका भी कि
हाँ, वो सब्सिडी नहीं, वो पूछ रहे हैं सब्सिडी कहाँ से ले सकते हैं। देखिए, ये सब ऑनलाइन है, मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी का इसका एक पोर्टल है, ऑनलाइन पोर्टल, उससे आप सारा काम इंस्टॉलेशन से लेकर सब्सिडी तक उसी से कर सकते हैं।
ठीक है रेहान जी, पुणे से हमारे साथ श्रीकांत जी जुड़ गए हैं। जी श्रीकांत जी।
हेलो।
हेलो जी श्रीकांत जी।
नमस्कार सर।
नमस्कार
जी।
हाँ, मेरा सवाल ये है कि पृथ्वी दिवस के पर मेरा सवाल है कि जैसे ये ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रही है, तो इसको कम करने के लिए क्या प्रयास किए जा रहा है, मतलब
ग्लोबल वार्मिंग को कम करने के लिए किस तरीके से?
तो जैसे कि मैंने बताया कि एक बहुत बड़ा सेक्टर इसमें एनर्जी सेक्टर है। एनर्जी सेक्टर, क्योंकि जैसे हम बिजली सेक्टर की बात करें तो कोयले पर चलता था पूरा, तो उसको हम कोशिश कर रहे हैं कि उसको शिफ्ट कर दें कोयले से, अब सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी, हाइड्रो एनर्जी, जो कि कार्बन डाइऑक्साइड कंट्रीब्यूट नहीं करते। तो हमारा जो पिछला अभी जो गुजरा साल है, जो फाइनेंशियल ईयर 25-26 है, उसमें हम लोगों ने अपने देश में 44 गीगावाट से ऊपर सोलर एनर्जी ऐड किया है, जो कि अभी तक के किसी भी साल की हमारी सबसे बड़ी कैपेसिटी। इससे पिछले साल हमने 29.5 किया था, इस बार 44 गीगावाट से ऊपर किया। और गैर कोयला जो इलेक्ट्रिसिटी इंफ्रास्ट्रक्चर 55 गीगावाट से ऊपर पिछले साल में लगा है, और इसको हम बढ़ाते हुए हमारा जो प्रधानमंत्री जी का जो पंचामृत प्रॉमिस हम बोलते हैं, 5 प्रॉमिसेस, उसके तहत ये है कि हम 2030 तक 500 गीगावाट यानी 500,000 मेगावाट सिस्टम लगाएंगे जो कि कोयले के बिना होंगे, गैर कोयला, जिसमें से 300 गीगावाट के करीब सिर्फ सोलर ही होगा और सब विंड और हाइड्रो और न्यूक्लियर। तो इसके ऊपर काम हो रहा है बड़ी तेजी से।
रेहान जी, सोलर पैनल लगवाने में कितना खर्च आता है?
एक किलोवाट का सिस्टम करीब 60,000 रुपए के आसपास में होना चाहिए। तीन किलोवाट अगर आप लगाएं तो 180 करीब समझ लीजिए।
जी
जी।
और अब त्रिपुरा से अविनाश जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। जी अविनाश जी।
जी नमस्कार।
नमस्कार।
और जी विशेषज्ञ को भी मेरा नमस्कार। और
नमस्कार।
मेरा सवाल ये है कि जैसे अभी बारिश का मौसम चल रहा है और हमारे घर में अगर सोलर पैनल लगा हुआ है तो जब बिजली तड़कता है तो ऐसे देखा जाता है कि ऐसे भी जब करंट लगा होता है तो नुकसान होता है बहुत कुछ, लेकिन सोलर पैनल में ऐसा कुछ है कि नुकसान होगा या नहीं होगा?
नहीं, आपका बहुत ये इम्पोर्टेंट सवाल है, लेकिन जो जो पैनल लगाने के साथ ये है कि वो लाइटनिंग अरेस्टर और इस तरह का सिस्टम उसके साथ लगाया जाता है तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी उसमें।
और अब हमारे साथ एनपी सिंह जुड़ गए हैं। नई दिल्ली से।
सभी पैनलिस्ट को मेरा नमस्कार।
नमस्कार।
मैं मेरे बुनियादी सवाल हैं, मैं ये पूछना चाहता हूँ कि इसकी मेंटेनेंस जो है वो क्या मांगती है और इसकी मेंटेनेंस कैसे करी जाए, देखभाल कैसे करी जाए। और तीसरा सवाल है कि 3000 स्क्वायर फीट की अगर टेरेस है तो उसमें से कितनी पैनल और कितनी बिजली प्रोड्यूस हो सकती है?
मेंटेनेंस के मामले में इसमें बहुत कम रिक्वायरमेंट है। सोलर सिस्टम की मेंटेनेंस में सिर्फ आपको ये करना है कि उस पैनल को महीने में करीब 3 बार आपको साफ करना है, जैसे गाड़ी का शीशा साफ करते हैं। तो धूल उस पर जमेगी तो थोड़ा उसका जनरेशन कम होता है, तो उसकी सफाई आपको करानी है 2 से 3 बार महीने में। ऐसा नहीं कि रोजाना साफ करने की जरूरत है, यही उसकी मेंटेनेंस है।
अच्छा रेहान जी, एक और अभी हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने अपने मन की बात कार्यक्रम में कुसुम योजना के तहत एक लाभार्थी का भी जिक्र किया था, और लाभार्थी के अनुसार खेत में सोलर पंप लगवाने के बाद जो उनकी कृषि पर लागत थी वो काफी कम हो गई थी, तो ये किस तरीके से वहां पर काम करता है?
देखिए, इसकी सोलर एनर्जी की एक और खासियत है
जी।
जैसे कोयले से बनने वाले जो बिजली के प्लांट होते थे वो सिर्फ बड़े प्लांट हो सकते हैं। आप कहीं दूर लगाएंगे फिर ट्रांसमिशन तारों से उसको अपने घर तक या खेत तक लाएंगे। ये सिस्टम आप छोटे सिस्टम जैसे आपने अभी बात हुई घर पे भी लगा सकते हैं, खेत में भी लगा सकते हैं। तो बहुत सारे किसानों की जो सिंचाई के पंप वो चलाते थे वो डीजल से चलाते थे।
अच्छा।
अब अगर जो पीएम कुसुम स्कीम है उसका पर्पज ये है कि किसानों की जो पंप्स हैं उनका सोलराइजेशन। तो आप जो पंप पहले डीजल से चला रहे थे अगर आपने उस पंप उसकी जगह सोलर बेस पंप लगा लिया जो कि जिसपे सब्सिडी भी दे रही है सरकार, तो आपकी रनिंग कॉस्ट तो फिर कुछ है नहीं सोलर में। तो वो जो आप खर्चा कर रहे थे उसके ऊपर वो बचने का मतलब ये कि वो पूरी तरह से आपकी खेती फायदेमंद होगी। ये
और एक और हमारे श्रोता हमसे जुड़ गए हैं हरदोई से, कमल किशोर जी। जी कमल जी।
जी नमस्कार।
नमस्कार।
मैं ये जानना चाहता हूँ कि जैसे हम दो पंखा चलाना चाहें सोलर प्लेट से दिन में तो क्या हमें बैटरी की जरूरत पड़ेगी या बिना बैटरी भी चल जाएगा?
ये जो सिस्टम है जो लग रहे हैं जो पीएम प्रधानमंत्री मुफ्त बिजली योजना में लग रहे हैं छतों पर आप देख रहे हैं, ये ग्रिड कनेक्टेड सिस्टम कहलाते हैं। इनमें बैटरी नहीं लगती तो बैटरी की जरूरत नहीं है। दिन में आपको जो सोलर एनर्जी से जो सोलर से जो बिजली बन रही होगी वो आपके घर में इस्तेमाल होगी और आपका बिल कम हो जाएगा, बिजली के बिल की बचत हो जाएगी और आप एक पर्यावरण के लिए जो फ्रेंडली ऊर्जा है वो इस्तेमाल करेंगे। तो इसमें बैटरी लगती नहीं है, बैटरी की जरूरत ही नहीं है।
और अब सासाराम से अमित उपाध्याय जुड़ गए हैं। जी अमित जी।
जी नमस्कार।
नमस्कार।
जो विशेषज्ञ है उनको मेरा नमस्कार। मेरा ये सवाल था सर कि जैसे कि हम लोग पृथ्वी दिवस एक मना रहे हैं 22 अप्रैल को, जिसको व्यापक तौर से क्यों ना एक जैसे बाकी चीज होती है त्योहार होता है तो उसको एक तरीके से कर दिया जाता है कि सबके लिए नेसेसरी हो जाए कि उस दिन कुछ ना कुछ प्रकृति से जुड़े जैसे ईवी चार्जिंग ले लिया या सोलर प्लेट लगा लिया या कुछ ऐसा चीज पेड़ पौधा लगा लिया तो कुछ ना कुछ एक नेसेसरी हो जाए ताकि इतना अगर करोड़ लोग एक्टिविटी करेंगे तो कहीं ना कहीं हमारा ग्लोबल वार्मिंग कुछ हद तक कम होगा। और दूसरी सवाल ये था कि जैसे कि हम लोग सौर ऊर्जा का प्लेट लगाते हैं तो उसमें कुछ ऐसा भी है, उसमें कुछ है क्या कि जैसे कि रोशनी कुछ कम हो जाए तो उससे चार्जिंग हो और उससे भी एक ऊर्जा का व्यापक स्तर पर बना रहा है। जी धन्यवाद।
नहीं, जो सोलर पैनल्स हैं अब ये ऐसा नहीं है कि रोशनी थोड़ी कम होगी तो ये बिल्कुल बंद हो जाएंगे, थोड़ा बहुत जनरेशन फर्क पड़ता है लेकिन ये कम रोशनी में भी काम करते हैं। और ग्रिड कनेक्टेड सिस्टम, क्योंकि वो आपको ग्रिड भी है और सोलर भी है तो आप थोड़ी रोशनी कम भी होती है तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, वो काम करता रहेगा। और ये अर्थ डे और इस तरह के जो और डेज हैं इनको लेके काफ़ी जागरूकता हुई है और हर साल मैं देख रहा हूं कि लोग इसके ऊपर जागरूक हुए हैं और अलग अलग तरह से इसको कोशिश कर रहे हैं पर्यावरण की तरफ अपना सहयोग करने की।
रियान जी, ग्रीन हाइड्रोजन बनाने में सोलर का क्या रोल है?
देखिए, हाइड्रोजन, जो हाइड्रोजन बिना CO2 के बनेगी उसको ग्रीन हाइड्रोजन कहते हैं। उसके लिए आपको बिजली से बनानी पड़ेगी हाइड्रोजन, तो बिजली अगर कोयले से बनाई तो फिर वो ग्रीन नहीं रहेगी। तो बिजली अगर आप सोलर से पैदा करें या विंड से पैदा करें या हाइड्रो से पैदा करें, उस बिजली से बनी हुई हाइड्रोजन ग्रीन हाइड्रोजन कहलाती है, इसलिए ग्रीन हाइड्रोजन का जनरेशन सोलर के साथ जुड़ा हुआ है।
अच्छा, महाराष्ट्र से गुरुनाथ थानी जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। जी गुरुनाथ जी।
जी मैम नमस्कार।
नमस्कार
मैम, मेरा क्वेश्चन है मैम, ये सोलर पावर पैनल ये तो मतलब कितने वेट का लगा सकते हो और जो स्मॉल और बिग ऐसा कुछ है क्या इसमें, और कॉस्टली और कम इसमें ये भी बताइए। और मैडम ये जो मतलब पैनल लगाने के बाद जो खर्चा कितना आएगा, और जो प्रधानमंत्री सूर्य घर जो स्कीम है उसमें से कितना पैसा मिलता है ये पैनल बिठाने के लिए। और मैडम ये जैसे बारिश हो कोहरा होगा जो ऊर्जा अपना सूर्य निकलता नहीं है सूरज निकलता नहीं, तो उसमें से मतलब इसका क्या इम्पैक्ट होता है, हमको बिजली बराबर मिलेगी क्या, और जो बिजली प्रोवाइडर जो कंपनियां होती है उनके कंपेरिजन में मतलब वो तो अपने मनमानी से बिल भेजते रहते हैं, तो इससे ये जो पैनल लगाने से हमको क्या बेनिफिट या मार्जिन मिल सकता है? थैंक यू मैम।
तो ये आप अपने आमतौर पर घर में जो रिक्वायरमेंट है उसमें 3 किलोवाट से 5 किलोवाट तक आमतौर पर ज्यादातर घरों के लिए सफिशियंट होता है, और आप इसमें पैनल जो है वो एक पैनल 500 वाट से लेके और 600 साढ़े 600 अब तो 700 के पास भी आ रहा है, तो वो पैनल बढ़ते जाते हैं जितना आपको लगाना है। आप 3 किलोवाट लगाओगे तो 4 पैनल 5 पैनल से लग जाएगा, उससे ज्यादा के लिए। दूसरी बात ये कि सब्सिडी जो है वो 78,000 3 किलोवाट तक के लिए सेंटर की है, केंद्र सरकार की, उसके अलावा राज्य सरकारों की, ज्यादातर राज्य सरकारों की, उसके ऊपर अलग है। और जो एक सवाल था कि ये एग्जैक्टली इसीलिए आई है ये स्कीम कि आपका जो बिल, अगर बिल खर्चा ज्यादा हो रहा है, बिल ज्यादा आ रहा है, तो अगर आप ये लगाओगे तो बिल आपका अगर आपने ठीक लगाया है तो 60% तक आपका 60-70% तक कम हो जाएगा। बल्कि पीएम सूर्य घर में एक सर्वे हुआ था जिसमें करीब 50% लोगों का ऐसा आया कि उनके कई महीनों में जीरो रनिंग चार्ज जीरो आया, सिर्फ फिक्स चार्ज आया, तो इतना फायदा बिल में लोगों को मिल रहा है।
और अब एक और प्रश्न हमारे पास आया है मध्य प्रदेश से, छतरपुर से राशिद अहमद खान का। जी राशिद जी।
जी नमस्ते मैम।
नमस्कार।
आप पूरे देशवासियों को परशुराम जयंती अक्षय तृतीया की हार्दिक बधाई शुभकामनाएं।
आपको भी बहुत बहुत बधाई।
जी मेरा सवाल निवेदन ये है कि जैसे क्लाउडी सीजन होता है या रेनी सीजन होता है तो क्या लाइट के प्रोडक्शन पे कुछ असर पड़ता है या कोई स्टोरेज की सुविधा रहती है जिससे काम अपना चलता रहे?
ये क्वेश्चन कई लोगों ने पूछा है। मैं इसको एक बार डिटेल बताना चाहूंगा। ये जो सिस्टम लग रहे हैं इनको हम कहते हैं ग्रिड कनेक्टेड सिस्टम, इसमें कोई बैटरी नहीं होती। तो इसमें क्या है कि जो बिजली आपके छत के पैनल्स बना रहे हैं वो आप इस्तेमाल करोगे सारे। मान लो आपको एक दिन में 10 यूनिट की जरूरत है और आपके सिस्टम ने 6 यूनिट बनाई है, तो 6 आपकी यहां से इस्तेमाल होगी, 4 आपके जो बिजली का खंभा है, जो तार है जिससे बिजली आ रही है उससे आएंगी, और ये ऑटोमेटिक होगा। अब अगर मान लीजिए किसी दिन बारिश बहुत तेज है या कोहरा है ये, तो आपका सोलर से जो बिजली बन रही है वो कम हो गई, तो अपने आप जो आपको बिजली वहां से आ रही थी, पोल से जो आ रही थी, वो बढ़ जाएगी। तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। आप जिस दिन बिजली इधर से कम बनेगी उधर से आप ज्यादा लोगे, जिस दिन इधर ज्यादा बनेगी उधर से कम लोगे, और आपको पता नहीं चलेगा कि कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। आपके बिल में दिखेगा कि इतना आपको सोलर ने बनाया और इतना आपने ग्रिड से लिया, और आपका बिल कम हो जाएगा।
और अब करनाल से संजीव जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। जी संजीव जी
नमस्कार। मैडम जी
नमस्कार।
और ये जो ऑफिसर साहब आए हैं इनको भी नमस्ते।
नमस्ते
जी, मेरा नाम संजीव कुमार है, गांव फूकन डिस्ट्रिक्ट करनाल हरियाणा से बोल रहा हूँ जी। सर हम बिल पॉवर्टी लाइन राशन कार्ड है हमारे पास और शेड्यूल्ड कास्ट में रहते हैं, तो एक तो ये जानना कि हमारे लिए क्या छूट है, और दूसरी बात है कहाँ संपर्क करना पड़ेगा अपने डिस्ट्रिक्ट में, जैसे पहले सुना था कि एडीसी ऑफिस में जाना होता है ऐसी स्कीम्स लेने के लिए, तो हरियाणा में मतलब क्या प्रोविजन है और कहाँ संपर्क करना पड़ेगा।
वैसे इसमें जो पूरा सिस्टम है ये ऑनलाइन है, मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी, नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय भारत सरकार, उसकी वेबसाइट पर सब ऑनलाइन है, पोर्टल है, उससे आप कर सकते हो, किसी भी ऑफिस में भी जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी।
और ये रेहान जी, आज दैनिक भास्कर में एक खबर भी आई है इसी पर कि सोलर पंप विलेज जो है वो महाराष्ट्र के जालना जिले के वरुड बद्रुक गांव में एक नई पहचान है, जहां पे 550 घरों के गांव में 7 साल में 545 सोलर पंप लगाए हैं, और इससे किसानों को काफी रोजगार के अवसर भी सृजित हुए हैं, जिसमें कि अब वो लोग प्राकृतिक तरीके से खेती कर पा रहे हैं, जिसमें सब्जी फूल फल ये सब जो है कैश क्रॉप लगा रहे हैं। तो ऐसे में मतलब और किस तरह की संभावनाएं होती हैं किसानों के लिए जिसमें रोजगार के अवसर सृजित हो सके।
देखिए ये एक तो मैंने आपको डीजल से जो हट रहे हैं पंप वो बताया, एक और स्कीम है फीडर सोलराइजेशन कहते हैं पीएम कुसुम में ही, उसमें क्या है कि जो आप बिजली बनी जो आपने सिंचाई के लिए इस्तेमाल हो गई वो हो गई, जो उससे ज्यादा बन गई वो जैसे घर में एक्सपोर्ट होती है एक्सपोर्ट होगी, आपको उसका पैसा मिलेगा। इसके अलावा अब एक और डेवलपमेंट है, अब क्या हो रहा है उसको हम एग्रो पीवी कहते हैं, यानी आप एक ही जमीन पर आप थोड़ा ऊंचे उठाकर पैनल लगाइए, उसके नीचे खेती करिए और पैनल से जो बिजली बन रही है वो आप बेच दीजिए, तो आपको खेती से भी आमदनी हुई और बिजली बनाने से भी।
जी तो अब हैदराबाद से एक और श्रोता हमारे साथ जुड़ गए हैं, रामाचर्या जी। जी रामाचर्या जी
जी नमस्कार मैडम।
नमस्कार।
तो अब वो मैं एक दौका घर, अब बारिश आता ना साहब, तूफान आता है, साइक्लोन आते हुए, अब इसमें सोलर से कहीं एनर्जी कैसा होता है एक बार बात करना।
तो जैसे मैंने बताया कि अगर किसी मौसम की वजह से बहुत तेज बारिश है, कोहरा है, तूफान है, अगर सोलर का जनरेशन कम होगा तो आपका अपने आप जो बिजली विभाग से जो कनेक्शन है उससे आपकी बिजली आती रहेगी, तो आपको कोई दिक्कत उसमें नहीं होगी।
और अब नई दिल्ली से केशव जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। जी केशव जी।
हेलो मैम सर नमस्ते, मैं केशव प्रजापति दिल्ली से बोल रहा हूँ।
जी नमस्कार।
मैम सवाल मेरे ये है, जैसे कि अगर हमारी छत 2 फ्लोर की है और चारों साइड 4 फ्लोर के मतलब घर बने हुए हैं, तो हम कितनी हाइट पे उसको पैनल को लगा सकते हैं, जैसे आंधी तूफान आता है तो उस टाइम पे कंपनी हमें क्या उसकी गारंटी पीरियड देगी अगर कुछ उसमें लॉस या कुछ हो जाता है, और इसमें क्या सेफ्टी होती है, इसमें क्या करंट भी आ सकता है बारिश के टाइम पे, और जैसे कि अगर हम घर पे जैसे हमारे वो होते हैं हीटर होता है और एक जो इलेक्ट्रिक चलता है बिजली वाला तो इंजेक्शन चूल्हा, तो खाना के दोनों में बन सकता है या नहीं।
तो इसमें जो इसको लगाने का तरीका है उस तरह से लगाया जाएगा, तो गीली अगर जगह है तभी भी करंट नहीं आना चाहिए, उस वो सेफ्टी है। एक सवाल जो आपका बिल्डिंग की हाइट से लेके, तो इसमें क्या है कि जहां पे लगाते हैं वहां ये देखना पड़ता है कि शेडो तो नहीं है, क्योंकि अगर शेडो होगी तो फिर जनरेशन कम हो जाएगा, तो लगाने वाला जो भी होगा वो पहले ये देखेगा कि उसकी सराउंडिंग में बिल्डिंग से बहुत ज्यादा शेडो तो नहीं आ रही है, अगर आ रही होगी तो फिर उसे लगाना थोड़ा मुश्किल है।
अच्छा इन्होंने एक और प्रश्न पूछा है कि खाना किस तरीके से अगर बने।
हाँ जैसे आप इंडक्शन चूल्हा इस्तेमाल करना चाहते हैं तो करें आराम से, वो अच्छे से काम करेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं।
अच्छा हम लोग ये जानना चाहेंगे कि अगर थोड़ा सा अपने श्रोताओं को इसमें और ब्रीफ अगर कर दिया जाए कि इसमें कितना खर्च आता है और कितने लेवल पर ये लगाया जा सकता है तो अच्छा होगा।
इसकी जैसे मैंने बताया सबसे खास बात यह कि ये आप कस्टमाइज कर सकते हो, किसी की जरूरत हो सकता है 2 किलोवाट की है, किसी की 10 किलोवाट की है, किसी की और बड़ी हो सकती है, तो पैनल सब में एक ही है, वो आप उसका नंबर बढ़ता जाएगा, तो इसलिए मैं कहता हूँ ये परफेक्ट मॉड्यूलर सिस्टम है, अपने हिसाब से आप कस्टमाइज कर सकते हैं।
अच्छा, इसकी साफ सफाई किस तरीके से की जाती है?
साफ सफाई करने में ये मतलब क्योंकि कोई मूविंग पार्ट इसमें है नहीं, सब स्टेशनरी है, सिर्फ आपको इसकी सफाई करीब 3 बार महीने में इसके पैनल को क्लीन करना है, जैसे शीशा साफ करते हो आपको।
अच्छा। और अब नई दिल्ली से हमारे एक और श्रोता जुड़ गए हैं, बलराम जी। जी बलराम जी।
हाँ मैम, नमस्ते मैम।
नमस्कार
मैम। सबसे पहले सबको नमस्कार करने जा रहा हूँ। नमस्कार, आपको भी नमस्कार। और मैम सवाल ही पूछना चाहता हूँ कि जैसे ग्रामीण इलाकों में अगर हमें सोलर पैनल लगाना है व्यक्तिगत मतलब घर पे, तो उसके लिए कुल कितनी जगह हमारे पास कम से कम होनी चाहिए?
तो इसको लगाने के लिए आप समझो 100 स्क्वायर फीट में आपका ये 1 किलोवाट लग जाएगा। ये रफ कैलकुलेशन है, थोड़ा कम में भी अब तो और एफिशिएंसी बढ़ गई है, तो कम ही चाहिए उससे 1 किलोवाट के लिए।
अच्छा, इसमें बिल जीरो कैसे होगा?
बिल जीरो ऐसे होगा कि आप ने जो आपका सिस्टम जनरेट कर रहा है वो ही एनर्जी आप यूज कर रहे हो, यानी सोलर एनर्जी जो आई वो आपने जनरेट जो सोलर ने जनरेट की आपने यूज कर ली, उसके बाद भी बच गई। तो बची हुई जो एनर्जी, मान लो आपको दिन में चाहिए थे, मान लेते हैं 3 यूनिट, और सिस्टम ने जनरेट कर दिए 6 यूनिट, तो 3 तो आपने यूज किए, 3 चले गए उन्हीं वायर से जिनसे आप बिजली ले रहे थे ग्रिड से, उन्हीं वायर से वो 3 वापस चले जाएंगे, एक्सपोर्ट हो जाएंगे, वो आपके अकाउंट में क्रेडिट हो गए। अब महीने के एंड में जब आपका बिल बना तो उन्होंने पाया कि आपने महीने में 50 यूनिट इंपोर्ट करे थे जो रात में किए होंगे नेचुरल, लेकिन 50 ही आपने एक्सपोर्ट भी कर दिए थे, तो आपका बिल हो गया 50-50 जीरो, तो सिर्फ फिक्स चार्ज आएगा उसके।
अच्छा, पृथ्वी दिवस की हम लोग बात कर रहे हैं, 3 बड़े उद्देश्य हैं इसके कि क्लाइमेट चेंज को रोकना, हवा पानी साफ रखना और संसाधन बचाना, तो सोलर पैनल इसमें कैसे मदद करता है?
सोलर पैनल जैसे मैंने कहा कि सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि जब आप कोयले से, देखो बिजली के बिना तो आज की सोसाइटी की, बहुत से लोग कहते हैं कि सोसाइटी की आज की ऑक्सीजन है बिजली, हर चीज बिजली से चल रही है, तो बिजली तो आपको चाहिए, लेकिन वो बिजली बनाने के एक तरीका तो है जिससे बनाते थे हम कोयला जलाएं और बिजली बनाएं, मगर वो CO2 और CO2 का बढ़ना ही असल में ग्लोबल वार्मिंग है, तो पूरा चैलेंज ही CO2 का है। तो हम सोलर पैनल आपकी बिजली बनाने को CO2 फ्री कर रहा है
जी।
ये उसका सबसे बड़ा कॉन्ट्रीब्यूशन।
और एक और एक प्रश्न हम पूछना चाहेंगे कि जैसे देश के सकल घरेलू उत्पाद में GDP जिसकी हम बात करते हैं, तो खेती में इसका बहुत ही उपयोग होता है, तो किसानों को किस तरीके से हम और लाभ पहुंचा सकते हैं?
देखिए, सबसे इम्पोर्टेंट तो मैंने पहले बताया आपको, जो PM कुसुम स्कीम के तहत इरिगेशन का सोलर है, सिंचाई का सोलराइजेशन हो रहा है। आपको पता होगा कि बहुत सारी जगहों पर पहले बहुत रात में बिजली मिलती थी, किसान रात में जाते थे सिंचाई के लिए, कभी मिलती थी कभी नहीं, तो दिन में आप आराम से सिंचाई करें अपने। डीजल से हट गए तो डीजल का जो खर्चा था बहुत भारी खर्चा हो गया था, वो बच गया। और एक मैंने आपको बताया कि एग्री PV, जब आप बिजली भी बनाएं और खेती भी करें, अपनी इनकम भी बढ़ाएं और साफ बिजली का इस्तेमाल करें
जी। और अब हम ये अपने आपसे अनुरोध करेंगे कि हमारे श्रोताओं को विश्व पृथ्वी दिवस पर आप कुछ कहना चाहें।
देखिए, मैं ये कहना चाहता हूँ कि एक बहुत आसान तरीका है, अगर हम सौर ऊर्जा को अपनाते हैं तो हम एक तरफ तो हम अपनी बिजली का खर्चा बचा रहे हैं, दूसरी तरफ हम पृथ्वी को बचाने के, एनवायरनमेंट को बचाने के काम में भी जुट रहे हैं, और देश जो है वो ऊर्जा आत्मनिर्भरता जिसे कहेंगे उसकी तरफ बढ़ रहा है, हम उसमें भी योगदान करेंगे, क्योंकि ये जो हमारी सोलर एनर्जी है या सनशाइन है
जी,
इसको कहीं से इंपोर्ट तो करना नहीं है, ये तो सबको फ्रीली अवेलेबल है
जी।
तो हम इस सब में हम योगदान कर सकते हैं अगर हम सौर ऊर्जा को अपनाएंगे तो।
जी बिल्कुल, और हम उम्मीद करते हैं कि जो आज का जो कार्यक्रम है हमारे श्रोताओं के लिए काफी लाभकारी सिद्ध हुआ होगा, बहुत सारी जानकारी आपने हासिल की होगी, और आपका प्रोफेसर रेहान साहब बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने अपना कीमती समय हमें दिया और आप यहां पर आए और हमारे श्रोताओं का जवाब आपने दिया। तो जी बिल्कुल, सूरज की रोशनी आपके लिए और हमारे लिए कितनी महत्वपूर्ण है आप समझ गए होंगे। और घर की दीवारों पर पड़ती रोशनी हो या फिर खेतों में बिजली उत्पन्न करना, सिंचाई के लिए पानी सींचना हो या फिर खाद्यान्नों को संरक्षित करने की बात, ये सारी बातें आज हमने की और श्रोताओं का सवाल जाना और प्रोफेसर मोहम्मद रिहान साहब ने भी उनके जवाबों का जो है सवालों का जवाब दिया। तो हम उम्मीद करते हैं कि आज का ये कार्यक्रम आपको जरूर पसंद आया होगा। तो इसके साथ ही फरहत नास को दीजिए इजाजत, कार्यक्रम यहीं समाप्त करने की। नमस्कार।